हरे राम
हरे राम
राम राम हरे हरे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्ये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा। हिंद महासागर के मध्य में सुंदर रमणीक मॉरिशस द्वीप में यहाँ पिचित्रैफ्रिया के स्थान पे कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तों की ओर से 3 दिनों का आयोजित जो प्रोग्राम था उसके आज तीसरे दिन कृष्ण कथा में आप सबका स्वागत है। और यहाँ के जो भक्त बड़े प्रेम और उत्साह के साथ वैदिक सनातन धर्म जो विश्व का धर्म है भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में जब कहते हैं कि मैंने ये गीता का ज्ञान सूर्य देव को दिया जो मेरा पहला शिष्य है तो सूर्य देव तो एक ही है जो दुनिया को रोशनी देता है। मॉरिशस का सन अलग नहीं है और ना अमेरिका का सन अलग है न रशिया का अलग है न चाइना का अलग है। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के इस श्लोक से दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि जैसे एक मेरा शिष्य सूर्य पूरी दुनिया को रोशनी देता है, पूरी दुनिया को जगाता है, पूरी दुनिया को जीवन देता है, ऐसे मैं पूरी दुनिया का भगवत गीता से उद्धार करने के लिए इस धरती के ऊपर अवतार लेके आया हूं। किसी भारतीय के लिए नहीं, किसी देश के लिए नहीं। सूर्य का कोई देश नहीं है, सब देशों का सूर्य है। सूर्य का कोई धर्म नहीं है, सब धर्मों वाले सूर्य से ही रोशनी लेते हैं। कोई भी दुनिया का रिलीजन है तो रोशनी तो सूर्य से लेता है, सूर्य तो एक ही है और सूर्य भगवान श्री कृष्ण का शिष्य है। तो भगवान का एक शिष्य दुनिया सारी को रोशनी दे रहा है, सारी दुनिया को जगा रहा है, सारी दुनिया को जीवन दे रहा है। तो इसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण सबके पिता हैं। ये भगवत गीता में भगवान कहते हैं, पिता अहम अस्य जगतो, मैं जगत का पिता हूं, माता मैं माता भी हूं। तो भगवान जगत का माता पिता है। तो हम क्या हैं? हम भगवान के बालक हैं, हम भगवान के बालक हैं, भगवान हमारे माता पिता हैं। तो आप सब माता पिता हैं, आप क्या चाहते हैं? आपके बालक, आपके चिल्ड्रन कैसे आपके साथ व्यवहार करें? आपका क्या विचार है? आपके बच्चे हैं ना, आप क्या चाहते हो बच्चे आपके साथ कैसे बातचीत करें? आपका हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा मेरा कहना माने। सब चाहते हो कि नहीं चाहते? मेरा बच्चा मेरा कहना माने, अच्छा बने, सेवा करे, यही चाहता है ना। तो भगवान हमारा पिता है, वही कहता है मेरी आज्ञा मानो, मेरी सेवा करो, यही कह रहा है और कुछ कह रहा है? तो भगवान भी वही कह रहा है जो हम अपने बच्चों से चाहते हैं। हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, हमारे बच्चे हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। देखो आपके बच्चे नहीं मानते हैं ना, आप जैसे कहते हो वैसे नहीं करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान की बात हमारे अपने पिता की नहीं मान रहे हैं, तो हमारे बच्चे हमारी कैसे मानेंगे? बहुत सीधी सी बात है, भगवान हमारे माता पिता, पालन पोषण करने वाले सब कुछ हैं। वो धरती के ऊपर अवतार भी श्री कृष्ण केवल आता है अवतार लेने लेकर, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते। उनका धर्म स्थापना करना भी उद्देश्य नहीं है, ये तो भगवान विष्णु का काम है। उनका असुरों का संहार करना भी काम नहीं है, ये भी विष्णु का काम है। भगवान विष्णु धर्म की स्थापना करता है, असुरों का संहार करता है, भगवान श्री कृष्ण इस काम के लिए अवतार नहीं लेते। उनके अवतार का मुख्य उद्देश्य भगवद गीता का ये श्लोक है, आप पाठ कीजिए, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति माम एति स्वर्जुन। ये श्लोक भगवद गीता का है। भगवान कहते हैं मैं इसलिए अवतार लेता हूं, अवतार लेने का मतलब है उन ऊपर से नीचे उतर के आना। मैं अवतार इसलिए लेता हूं कि लोगों को पता लगे कि भगवान इस धरती पे कैसे आता है। आम बच्चे की तरह मां बाप से पैदा होता है ऐसा नहीं आता है। एक बात तो भगवान का आना, अजन्मा भगवान, भगवान क्या है? अजन्मा है, अनबार्न है, कोई उसका बर्थ नहीं होता। जिसका बर्थ होता है उसका डेथ होगा, अगर जन्म हुआ तो मृत्यु होगा। तो शरीर का जन्म और मृत्यु होता है, आत्मा का सना जन्म मृत्यु नहीं होता है। और भगवान तो आत्मा नहीं है, परमात्मा का भी स्वामी है। परमात्मा तो उसका एक धरती के अंदर अंश है, लेकिन स्वयं भगवान तो पुरुषोत्तम है, भगवान पुरुषोत्तम है। तो वो जब धरती पे आते हैं तो कैसे आते हैं, प्रकट होते हैं? ये कोई तत्व से जान ले, सही माना में जान, इन ट्रुथ देव दे अंडरस्टैंड दिस तत्वतः वेति, वेति का मतलब जान लेना, वेति का मतलब वेद का मतलब जान लेना, जो इसको तत्व से जान ले। तो तत्व से कैसे जाने, श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण के अवतार का जहां वर्णन है वहां लिखा है भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकर। पहले लिखा है भगवान कैसे है, बोला विश्वात्मा है। विश्वात्मा का अर्थ ऐसे है, देखो हम अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं दुनिया में, आदमी किसी से प्यार नहीं करता है, सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार करता है, पहला ये साफ समझ लेना चाहिए। बाकी सब ठीक है, बच्चों से प्यार करता है, परिवार से प्यार करता है, देश से प्यार करता है, लेकिन असल में जब कोई समस्या आएगी तो सबसे ज्यादा अपने आप से प्रेम करता है, इससे ज्यादा किसी से नहीं करता। क्यों करता है अपने आप से प्रेम, क्योंकि आत्मा है। आत्मा जो हमारा है उसके कारण हम जीवित हैं, और हम अपने आप से इसलिए प्रेम करते हैं क्यों, हम आत्मा है हमारे अंदर। ऐसे भगवान सर्व आत्मा है, ये भगवान अपि विश्व आत्मा, वो विश्व की आत्मा है, तो इसलिए सारे विश्व को उससे प्रेम करना चाहिए। और उसका दूसरा मीनिंग है ही लव्स एवरीबॉडी, भगवान विश्व आत्मा का अर्थ है वो सबसे प्रेम करता है, ही लव्स एवरीबॉडी, भगवान हमसे प्रेम करता है। कितना हमसे प्रेम करता है, अब देखो जो चीज आपको सबसे ज्यादा इस दुनिया में चाहिए, जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, वो कोई वो गवर्नमेंट नहीं देती है, वो पैसों से नहीं मिलती है, वो हवा मुफ्त में भगवान ने चला रखी है, वायु देव ने। जिस हवा में सांस ले रहे हैं ये हवा पैसों की नहीं मिलती, ये हवा गवर्नमेंट नहीं देता है। इस हवा को अस्पताल में ऑक्सीजन का एक बोतल का 500 रुपया कीमत है, और हम 24 घंटे में ऐसी चार बोतलें खा जाएंगे, 2000 रुपये तो हमारा रोज सांस लेने का खर्चा आ जाएगा, और ये बिल भगवान की तरफ से आने लग जाए तो खाने के लिए कुछ पैसा भी नहीं बचेगा, सब खला सब कंगाल। भगवान ने मुफ्त क्यों दिया, मुफ्त में ये हवा दे दिया, क्योंकि विश्व आत्मा है, हमसे प्रेम करता है, और जो हमसे प्रेम करता है वो हमसे चाहता है हम उससे प्रेम करें। इसलिए एक ही धर्म है दुनिया में कि भगवान से प्रेम करना। प्रभुपाद जी कहते हैं साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड, मैं दुनिया में भगवत प्रेम का विज्ञान सिखाने आया हूं। मैं ये नहीं कहता हूं मेरा धर्म तुम्हारे धर्म से बड़ा है, मेरा धर्म तुम्हारे धर्म से महान है, ये नहीं कह रहा हूं मैं। प्रभुपाद कहते थे माय रिलीजन इज बेटर देन योर रिलीजन, ये मैं प्रचार करने नहीं आया हूं, मैं ये सिखाने आया हूं साइंस ऑफ सोल, आप आत्मा के ज्ञान को विज्ञान को जानिए, एंड देन साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड, भगवान के प्रेम के विज्ञान को जानिए। और इसलिए प्रभुपाद ने भारतीयों में प्रचार नहीं किया, सबके लिए किया। अमेरिका में कोई भी हिंदुस्तानी प्रभुपाद के सत्संग में नहीं आया। पहले दिनों में प्रभुपाद जी जब कथा कर रहे थे तो अमेरिका के नौजवान 18 20 22 साल के जो अपने मां बाप का कहना नहीं मानते थे, घर छोड़ के कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ के सुख की खोज में, अरे वो कह रहे थे सुख अगर पैसे से मिलता तो मेरे बाप के घर में करोड़ मिलियंस रुपया पड़ा है। अमेरिका के लोग धनी तो है, बोला पैसा तो हमारे घर में मिलियन में पड़ा है, लेकिन मेरी मां और बाप रोज लड़ते रहते हैं, तो इसका मतलब पैसे में तो सुख नहीं है ना। तो वो बड़े दुखी हो गए कि लोग कहते हैं पैसे में सुख है, पैसा तो हमारे घर में पड़ा है, सुख तो है नहीं, तो इसका मतलब सुख कहीं और है। तो वो सुख को ढूंढते घूम रहे थे, और उस वक्त प्रभुपाद जी वहां पहुंचे, उन्होंने कहा सुख तो तब मिलेगा जो सुख का दाता है उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ लोगे। भाई सुख किसके बाद है, बोला भगवान सुख सागर है, भगवान सुख पहला, देखो शांति होगी तो सुख आएगा। गीता का एक श्लोक है जो जिसका अंश होता है ना वो वहीं जाएगा तब सुखी होगा। जैसे पत्थर है ना, धरती का अंश है ना, अब कहीं भी फेंको वापस धरती पे आएगा तभी पत्थर टिकेगा। ये जो पत्थर है कहीं भी फेंको वापस धरती पे आएगा, क्योंकि धरती का अंश है। आप ये अभी अभी आरती करेंगे ना
ये आग इसमें जलाएंगे ना, ये ऊपर जाएगी। ये ऊपर जाती है कि नहीं जाती? क्यों? ये सूर्य का अंश है, ये नीचे नहीं जाएगी, ये ऊपर ही जाएगी, क्योंकि उसका अंश। ऐसे पानी कहीं भी डालो समुद्र में जाएगा, क्योंकि वहीं से आता है। तो ऐसे हमारा आत्मा भगवान का अंश है। ममाइव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान का अंश हमारा आत्मा है। तो उसको सुख कब मिलेगा? जब वापस भगवान के पास जाएगा, और कहीं नहीं मिलेगा। और दसवें अध्याय भगवत गीता में तो भगवान ने कह दिया, इंद्रियाणाम मनस चास्मी, इंद्रियों में मन में हूं। तो मन भगवान की विभूति है। हमारा मन दुनिया में कितना भी भटके, कहीं उसको शांति नहीं मिलेगी। वो वापस जब मन भगवान में लगेगा तभी शांति मिलेगी, क्योंकि है ही उसकी विभूति। जो जिसकी विभूति है उसी के पास जाएगी तब सुखी होगी। बाहर में कहीं भी भटकाओ नहीं सुखी होगी, कुछ भी दे दो सुखी नहीं होगी। जैसे मछली है, पानी के बाहर सुखी नहीं हो सकती है। उसको आप बाहर मिला बुला के भले दाल पुई खुलाओ के खिलाओ के गाता पीमा खिलाओ, खाएगी नहीं? खाएगी क्या? मछली खा के खुश रहेगी क्या? उसको सोने का हार पहना दो को मछली खुश हो जाएगी? पानी में खुश रहेगी। उसको कुछ भी दुनिया का दो, उसको कुछ नहीं कर सकता। ऐसे हम भगवान का अंश हैं, तो भगवान की सेवा में और प्रेम में ही सुख हो सकता है, और कहीं सुख नहीं मिल सकता। तो भगवान विश्व आत्मा है। विश्व आत्मा का मतलब विश्व से प्रेम करता है, और विश्व आत्मा होते हुए भी भक्तानाम अभयंकर। अगर कोई भक्त बन जाता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, उसको किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं, नो फियर। ये भगवान का बहुत बड़ा गुण है, भक्तानाम अभयंकर। आप भक्त बन जाएंगे देन यू हैव नॉट टू फियर। आपको किसी के डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं भक्तों की मैं रक्षा करता हूं। इस दुनिया में आपको डर है कि नहीं है? आपको कुछ भय लगता है जीवन में कि नहीं? पता नहीं कल पैसा मिलेगा, खाएंगे कि नहीं मिलेगा धन, अरे ये शरीर छूट जाएगा, पता नहीं मर तो जाएंगे। ये तो दुनिया में डर है कि नहीं? सबको मरने का डर तो सबको है कि नहीं है? दुनिया में सब कुछ छूट जाएगा, बच्चे छोड़ जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, कौन देखेगा? डर है कि नहीं है दुनिया में? और वो तो दूर की बात है, रोज रोड पे चलते हैं तो पता नहीं कब क्या हो जाए, कोई भरोसा थोड़े है। जीवन में तो हर समय भय लगा हुआ है। भजहुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरौ ये भव सिंधु रे। तुम्हारे को भय से मुक्त होना है, डरने नहीं चाहते हो तो नंद नंदन का मन भजन करो। भजहुरे मन, मन तुम भजन करो। किसको कह रहे? मन को, क्योंकि मन दुनिया में फंसा हुआ है। अभी मन भगवान श्री कृष्ण का भजन कर ले, नंद नंदन का कर ले, बोला क्या लाभ होगा? अभय चरणारविंद रे, भगवान के चरण कमल कैसे हैं? भय से मुक्त कर देते। और इस श्लोक का हमारा को तो ऐसे लगता है कि ये गोविंद दास कवि ने भविष्यवाणी कर दिया, फोरकास्ट किया है। क्या फोरकास्ट किया है? बोला कृष्ण नंद नंदन का भजन करो, लेकिन कैसे करो? बोला जैसे अभय चरणारविंद ने सिखाया है। अभय चरणारविंद भक्त प्रभुपाद जी का नाम है। तो गोविंद दास ने एक्चुअली फोरकास्ट किया है कि कृष्ण नंद नंदन का भजन ऐसे करो जैसे अभय चरणारविंद प्रभुपाद जी ने सिखाया। प्रभुपाद जी का नाम है अभय चरणारविंद, ऐसी भक्ति वेदांत। क्योंकि भारत में बहुत कृष्ण मंदिर हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम कहीं नहीं है, भक्ति नहीं है। भागवत के महात्म में आता है, भक्ति देवी अपने दो बेटे, भक्ति के दो बेटे हैं, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग। ज्ञान और वैराग भक्ति के बेटे हैं। वो कलयुग में बूढ़े हो गए। वृंदावन में भक्ति तो नौजवान हो गई, बेटे बूढ़े हो गए। नारद ने कहा, देवी तुम कौन हो? बोला मैं तो भक्ति हूं, मैं यहां जवान हूं, वृंदावन में सब भक्ति करते हैं, लेकिन मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए। नारद को आश्चर्य लगा कि भक्ति के बेटे कैसे बूढ़े हो गए। कलयुग है, किसी के मन में कथा सुनने के ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं, किसी के मन में दुनिया में कुछ छोड़ने का मन ही नहीं करता है। वैराग का मतलब है कुछ छोड़ना और अपने आप को भगवान से जोड़ना, कोई नहीं चाहता, तो बूढ़े हो गए। भक्ति ने नारद जी को कहा कि ये लोग अगर कलयुग में मेरा, भक्ति ने कहा, मेरे को स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं समुद्र पार चली जाऊंगी, मैं यहां नहीं रहूंगी, भारत में नहीं रहूंगी, ऐसा बोला। तो भक्ति को कोई नहीं करने वाला जब रह गया तो वृंदावन से भक्ति अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के हृदय में बैठकर और जहाज में चढ़ के पानी के अमेरिका चली गई। हाँ, और उस भक्ति का प्रभुपाद ने इस्कान के रूप में विश्व में स्थापना की। अब किसी को कृष्ण भक्ति चाहिए, जिसमें लिखा है कृष्ण भक्ति वासुदेव भक्ति, वासुदेव भक्ति करने से जनस्य वैराग्यम ज्ञानम अहितुकम, अपने आप वैराग और ज्ञान, बच्चे भाई अपने आप पैदा हो जाएंगे, मां आ गई तो बच्चे अपने आप आ जाएं। तो इस वक्त भक्ति जिसका स्वरूप है प्रेम, भक्ति प्रेममयी होती है, भक्त भगवान से प्रेम करता है उसको भक्ति कहते हैं। और आप किसी से प्रेम करते हैं ये कैसे दिखाएंगे भाई? प्रेम किसी को दिखा सकते हो क्या? तुम मुझसे प्रेम करेगो कैसे दिखाओगे? आपको दुनिया में किसी को प्रेम दिखाना है तो एक ही रास्ता है, सेवा करो। आपकी सेवा से वो खुश हो जाएगा तो समझेगा कि मुझसे प्रेम करती। मां बच्चे से प्रेम करती है तो उसकी सेवा करती है, पत्नी पति से प्रेम करती है तो उसकी सेवा करती है, बेटे से मां प्रेम करती है तो सेवा करती है। तो सेवा प्रेम का दिखाने का रास्ता है। प्रेम का आप प्रेम को प्रैक्टिकली दिखाएंगे कैसे, प्रदर्शन कैसे करेंगे? सेवा करके। तो भक्ति महारानी अभय चरण अरविंद भगवशील प्रभुपाद के इस कृष्ण भावना अमृत संग से ही भक्ति की प्राप्ति होगी। मंदिर बहुत हैं, पूजाएं बहुत हैं, लेकिन भक्ति कहीं प्रकट नहीं होगी। भक्ति प्रकट होगी भागवत से। जब नारद भक्ति के दोनों पुत्रों को हाथ से हिला के जगा नहीं पाया, वेद का ज्ञान कान में सुना के उठा नहीं पाया, तो नारद दुखी होकर भक्ति को वचन दिया कि मां तेरे को मैं जन जन में, जन जन में मतलब आदमी आदमी तक, मैन मैन तक, टू दी मैन एंड मैन, टू दी होम एंड होम, टू दी लैंड एंड ओवरसीज, मैं आपको दुनिया में घर घर तक पहुंचा दूंगा। और नारद अपने गुरु स्थान चला गया। नारद का गुरु स्थान कौन सा है? बद्री का आश्रम, भगवान नारायण। भगवान नारायण ने कहा, नारद तुम्हारे को साधुओं से, इफ यू एसोसिएट विद सेंटली पर्सन, साधु से संग करोगे तो तुम्हारे को रास्ता मिलेगा। उधर ही बद्री का आश्रम में, विशाला नगरी में, नारद को उसके चार भाई बड़े मिल गए, कुमार, सनक कुमार, सनानक, सनातन कुमार, सनक कुमार, जो ब्रह्मा के पहले पुत्र हैं। उन्होंने कहा, नारद तुम चिंता क्यों कर रहे हो? अरे तुमको देख के लोग सुखी हो जाते, नारद तुम क्यों दुखी हो? नारद ने कहा, ऐसे मैंने भक्ति को वचन दिया है, उनके दोनों बेटों को मैं जगा नहीं पाया, अब आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। बोला, नारद तुमको मालूम है, तुम क्यों अनजान बन रहे हो? अरे भागवत सुनाने से भक्ति के दोनों बच्चे जागृत हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे। तो नारद ने कह दिया, ये मेरे भाइयों, हे चार कुमारों, तो वेद में और भागवत में अंतर क्या है? मैंने वेद तो पूरा उसके कान में पढ़ के सुनाया। तो हंसने लगे चार कुमार। बोला, आम के सारे पेड़ में आम का रस होता है कि नहीं होता है? मैंगो का जूस मैंगो की पूरी ट्री में होता है कि नहीं होता है? जूस होगा कि नहीं, और ट्री से ट्री में है कि नहीं है, कहां से आएगा भाई? ट्री पूरी में है तो सही ना, जैसे दूध गाय का, गाय के अंदर पूरे है कि नहीं है? आप मैंगो की ट्री को काटोगे तो जूस मिलेगा क्या? गाय को काटोगे तो जूस मिलेगा क्या? दूध मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बोला ऐसे ही वेद तो कल्प वृक्ष है, निगम कल्प त्रुगलितम फलम। ये भागवत का तीसरा श्लोक है। निगम कहते हैं वेद को, तो वेद तो वृक्ष है, उसके अंदर से रस कहां से आएगा? लेकिन भागवत वेद रूपी वृक्ष का पक्का फल है। निगम कल्पत्रु गलितम फलम, पका हुआ फल है भागवतम। और कहा चार कुमारों ने, हम आपको भागवत सुनाते हैं, आप हरिद्वार में चलो। बद्रीनाथ से हरिद्वार आए, जहां गंगा जी आनंद, एक आनंद घाट है, आनंद वन है, आनंद घाट है, जहां गंगा सात धाराओं में सप्त ऋषियों के लिए बहती है, हरिद्वार में। वहां भागवत कथा सनक आदि ऋषि शुरू किया, नारद यजमान होके बैठे, बाकी सारे ऋषि आ गए। तो कथा के महात्म्य के समय सुंदर स्त्री दो बच्चों के साथ प्रकट हो गई और नृत्य करने लगी। सब आश्चर्य से देख रहे हैं कि ये कौन स्त्री है, ये नाच रही है, और ये ज्ञान, ये कौन लड़के हैं, नौजवान नाच रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। सब ने आश्चर्य से सनातन गोस्वामी, सनातन ने पूछा, सनातन कुमार ने पूछा, बड़े ने, कौन हो देवी, ये दोनों पुत्र कौन है? बोला मैं भक्ति हूं, ये मैंने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग है। अरे ज्ञान और वैराग भी नाच रहे हैं, ज्ञान और वैराग भी नाच रहे हैं। बोले कहां से प्रकट हुई मां? बोला भागवत से प्रकट हुई, मैं भागवत से अभी प्रकट होके आई हूं। तो भागवत से भक्ति ज्ञान और वैराग प्रकट होता है, क्योंकि भागवत क्या है? भागवत भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। भगवान श्री कृष्ण कलयुग में भागवत के रूप में प्रकट हुए हैं। वासुदेव भक्ति मतलब भागवत सेवया, भागवत सेवया मतलब भागवत का श्रवण करना, उससे क्या होगा? भक्ति ज्ञान वैराग के साथ प्रकट हो जाएगी, और जैसे ही प्रकट हो जाएगी तो फिर हमको समझ में आएगा कि भगवान अवतार कैसे लेते हैं। तो भगवान ने क्या किया, मैं अवतार कैसे लेता हूं? भक्तानाम अभयंकर, मेरे भक्तों को भय से मुक्त करता हूं। तो कृष्ण का भजन करने से और कृष्ण की भक्ति करने से, जैसे प्रभुपाद जी ने सिखाई है, तो मानव जन्म में हम भाव सागर इस दुनिया से मुक्त हो जाएंगे, भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। ये भगवान के वचन है कि मैं अपने भक्तों को भाव सागर से तत्काल निकाल लेता हूं, अभी का अभी निकाल लेता हूं, मरने का इंतजार नहीं करना है, जीवन मुक्त हो जाएंगे, जीते जी वो मुक्त हैं। तो ये हुआ भगवान का जन्म कैसा है। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम भयंकर, फिर क्या कहा? आवेश आवेश मन अनंक दुम दुबी अंश भागे न। भगवान अपने सारे अंशों के साथ, जितने पहले अवतार हुए थे उन सबको अपने अंदर समाकर, और श्री कृष्ण वसुदेव के मन में आ गए। कहां आए? बोला वसुदेव के मन में आए। तो भगवान का अवतार कैसे हुआ? भगवान वसुदेव के मन में आ गए और वसुदेव से बहुत रोशनी निकलने लगी, वसुदेव चमकने लगा। जब भी किसी साधु महात्मा ने हृदय में भगवान को जागृत कर लिया है ना, तो उसमें से प्रकाश निकलता है, उसको देख के लोग अपने आप खड़े हो जाते हैं और उसके सामने उनका सर झुक जाता है, अपने आप प्रणाम कर लेते हैं। प्रभुपाद जी साउथ अफ्रीका में जब उतरे तो उस वक्त में गोरे लोग भारती को प्रणाम नहीं करते थे, ये सरकार का नियम था। लेकिन वो जो प्रभुपाद के शिष्य थे वो तो अमेरिका के थे, वो बेचारे हिंदुस्तानियों को लाए लाने के लिए, लेकिन दूर से प्रभुपाद को देखा तो अपने आप प्रणाम हो गया। तो ऐसा जिसने भगवान को हृदय में प्रकट किया है, लोग अपने आप उसको प्रणाम करते हैं और उठ के खड़े हो जाते हैं, उसको कुछ करना नहीं पड़ता है। अपने आप खड़े हो जाते हैं। ऐसे कहते हैं भगवान जिसमें प्रकट हो साक्षात भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा गए थे 11 साल के बाद वृंदावन से नारद ने क्या किया, नारद ने जाके कंस को बोला हे भोजराज कंस, आपको वसुदेव के दो बेटों से जो डर लग रहा है ना, जो आपको मिल नहीं रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं नंद भवन में बैठे हैं कृष्ण और बलराम, अब तुम जो जाए वो करो। नारद ने ये समाचार दे दिया और कंस ने कहा अक्रूर तुम जाओ नया रथ लेकर कृष्ण और बलराम को बोलो आ जाओ, यहां एक बहुत बड़ा धनुष यज्ञ होगा और नंद बाबा और सबको यहां निमंत्रण देके इनवाइट करके लेके आओ। अक्रूर को डर लगता है कि ये कंस उनको मार देगा, ये बहुत क्रूअल है, वो बच्चे छोटे हैं 11 साल के, लेकिन मन में आया भगवान का दर्शन तो होगा। और वहां नारद ने जाके भगवान श्री कृष्ण को गैया चराते हुए देखा, काओ को हर्ड कर रहा था गाय, तो कृष्ण को कहा प्रणाम श्री कृष्ण, मैं कंस को बोल के आया हूं, अब मैं 5 दिन के अंदर 2-4 दिन में कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं, चाणूर मुष्टिक को मारना और अपनी मां वसुदेव और देवकी को तो जेल से मुक्त करो, बहुत मक्खन खाया बहुत दूध पिया ब्रज का, अब कुछ मथुरा वालों के ऊपर कृपा करो। अब नारद ने दोनों को कह दिया, उसको कहेगा वहां है, उसको कहा वहां जाना है, और फिर भगवान श्री कृष्ण में बात कौन सी करने जा रहा था याद रखना कि भगवान जिसके हृदय में आता है अपने आप लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, तो स्वयं भगवान जिसके सामने जाए तो वो तो उठेगा कि नहीं उठेगा। तो भगवान श्री कृष्ण को अक्रूर लेने आया रथ लेकर, तो बलराम और कृष्ण को रथ में अक्रूर नंदगांव से लेके मथुरा के लिए रवाना हुआ और नंद बाबा बैलगाड़ियों में बहुत से और भक्तों को लेके गए। तो कृष्ण बलराम देर से पहुंचे, रथ में थे फिर भी घूमते घूमते आए, रात को तो रहे अपने बाबा के पास, दूध पिया सो गए, दूसरे दिन मथुरा घूमने निकले। मथुरा घूमने निकले तो अपने ग्वाल बालों को साथ लिया, भगवान ने बोला देखो हम तो गैया को चराते हुए आए हैं, गोबर लगा हुआ है कपड़े पे, मथुरा बड़ा शहर है, हाँ मथुरा तो ड्रेस है, कपड़े तो अच्छे होने चाहिए ना। ग्वाल बालों ने कहा कृष्ण कपड़े अच्छे अच्छे कहां से आए, बोला वो जो धोबी ले जा रहा है ना कंस का, उसको बोला ए धोबी हमारे नव ग्वाल बालों को नए कपड़े पहनाने हैं। उसने बोला कंस का धोबी हूं तुमको कैसे कपड़े दूंगा। भगवान ने क्या किया, कृष्ण ने इधर देखा उधर और धोबी को ऐसे हाथ मारा, धोबी का गर्दन जाके वहां गिरा और धोबी मर गया। तो पूरे मथुरा में टेररिज्म फैल गया कि कौन सा बच्चा है हाथ लगाता है तो गर्दन गिर जाता है, सारे मथुरा के धोबी सब डर गए। भगवान ने वो कपड़े लिए, ये धोबी कौन था, किसी ने पूछा ये धोबी कौन था कृष्ण ने क्यों मारा, बोला ये राम अवतार में जिस धोबी ने सीता के ऊपर आरोप लगाया था मर्यादा पुरुषोत्तम, इसलिए मैं तो नहीं मारूंगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं तो दूर से बुला के पत्थर, फिर भगवान ने ये कपड़े छोटे करा के बच्चों को पहनाए, तैयार हो गए, फिर बोला फूल लेंगे, सुदामा माली ने फूल दे दिए, फिर कहा चंदन भी तो लगना चाहिए, तो कुब्जा जा रही थी एक, वो बड़ी टेढ़ी त्रिवर्कर आती 3 जगह से टेढ़ी थी कुबड़ी, लोग उसको चिढ़ाते थे। भगवान ने कहा ओ सुंदरी, वो तो ऐसे देखने लगी कि आज तक सब लोग मुझे बंदरी बोलते थे कुबड़ी बोलते थे, ये कौन है मुझे सुंदरी बोल रहा है, तो बड़ा देख के कृष्ण को खुश हो गई। और उसने कहा भगवान कहते हैं हमको ये चंदन लगाओगी अंगराग, ओ तुम जैसे सुंदर बच्चे हो तो बड़ा अच्छा लगेगा। कृष्ण बलराम को बड़ा चंदन लगाया अंगराग लगाया, भगवान ने कहा इसने मेरी सेवा की है तो इसको तत्काल फल देना चाहिए। भगवान ने एक पांव रखा उसके पांव के ऊपर, एक हाथ से पकड़ी चोटी और एक हाथ पीठ को ऐसे दे मारा, वो एकदम सीधी हो गई सुंदर हो गई और सारे मथुरा में ये समाचार फैल गया ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण एकदम हाथ लगाने से ब्यूटीफुल बना देता है, सुंदर बना देता है, उसको कोई जरूरत नहीं किसी के पास जाने की। अब तो सारी स्त्रियां कृष्ण की तरफ हो गई कि ऐसा कौन कहां मिलेगा जो सबको सुंदर मुफ्त में बना रहा है, और इतनी ही इस कुबड़ी को ही सुंदर बना दिया, वाह वाह वाह। और यहां से फ्री होकर और कृष्ण और बलराम भागे और सीधे जहां धनुष रखा हुआ था दूसरे दिन बहुत बड़े उत्सव के लिए, उसको लेके दो टुकड़े किए। और तब जो वहां सिपाही खड़े थे वो आए, दोनों सब सिपाहियों को मार दिया। अब कंस को रात को पता लगा धनुष भी टूट गया, चंदन आया नहीं, कपड़े आए नहीं, धोबी मर गया, समाचार सारा मिला, बड़ा भयभीत हो गया। कृष्ण बलराम जाके घर में अपने बाबा के वहां बगीचे में बैलगाड़ी में रखे हुए तो सो गए। दूसरे दिन सुबह बड़ा रंगमंच लगा हुआ था जहां बड़ा वो एग्जीबिशन होना था, बड़ा फंक्शन होना था। कंस को डर था, उसने एक बहुत बड़ा हाथी भारी, उसका नाम था कवलिया पीड, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हाथी को चलाने वाला महावत बिठाया। बोला कृष्ण बलराम को हाथी से कुचलवा देना, अंदर मत आने देना। कृष्ण बलराम वहां से आ रहे हैं दोनों झूमते झूमते, बाकी सब लोग ऊपर पवेलियन में बैठ गए तो हाथी सामने खड़ा है। बोला इस हाथी को हटाओ, हमको अंदर जाना है, देखो मामा ने हमको इनविटेशन देके बुलाया है, अक्रूर बका का आया था लेने। वो बोला हाथी नहीं हटेगा। बलराम की ओर कृष्ण देखे, बोला भैया दाऊ जी हाथी नहीं हटेगा, क्या करेंगे। पीछे से पूछ से पकड़ के ऐसे हाथी को खींचा, हाथी पीछे गया और एक मुक्का मारा हाथी को गले कान के ऊपर, हाथी हिला, एक दांत कृष्ण ने निकाला, एक बलराम ने निकाला, हाथी को नीचे गिराया, महावत को मारा और कंधे के ऊपर ऐसे हाथी के दांत रखे हैं और सीधे रंगमंच में गए। कंस ऊपर बैठा है जैसे वे बड़े पंच के ऊपर, कौन आ रहा है। बोला कृष्ण बलराम आ रहे। अरे कंधे के ऊपर क्या है। बोला कोमल या पीड़ हाथी के दांत हैं। हाँ हाथी मर गया। डर लगा। ए चाणू रे मुष्टिक, बड़े पहलवान बैठे थे, बड़े कुश्ती के, बोलो जाओ इनको पकड़ो, पकड़ के मार दो। और दोनों कहते हैं आओ आओ कृष्ण बलराम हमारे साथ कुश्ती करनी है। कृष्ण बलराम कहते हम छोटे बच्चे हैं, देखो 11 साल के, तुम रेशनल ऐसे मोटे पकड़े, हम तुमसे क्या लड़ाई करेंगे, हम तुम्हारे मैच नहीं है। वो कहते तुम क्या बोलते हो, तुम छोटे हो, कहां गई पूतना, कहां गया तृणावर्त, कहां गया बकासुर, कहां गया अघासुर, ये सब तुमने मारे हमको मालूम नहीं है, इतने सारे राक्षस मामा ने भेजे तुम्हारे को खिलौने, वो सभी तुमको पानी फेर दिया, एक भी जिंदा नहीं बचा, और किसी के ऊपर ना हाथ, अब कोई चोट भी नहीं लगी, डॉक्टर के पास जाके देखा है तो बोला ये तो अपने आप मर गया, इसके ऊपर किसी ने जहर भी नहीं दिया है, कोई अखंड। अब पूतना को दूध पीते हुए प्राण निकाल दिया, पूतना का पोस्टमार्टम करेंगे तो किसी ने मारा ऐसा तो दिखाई नहीं देगा ना, अब दूध पीते हुए कैसे मर गई पता नहीं। अब किसी ने चोट भी नहीं मारी, कहीं चाकू भी नहीं लगा हुआ है, गोली भी नहीं लगी हुई है, तो ये मरे कैसे। अरे मैंने तो नहीं मारे, अपने आप मर गए होंगे, अपने पाप से मरे, मैं किसी को थोड़ी मार रहा। तो चाणूर मुष्टिक ने कहा नहीं हमसे, तो ऊपर से लोग कहने लगे ये अन्याय है, देखो कितने बड़े रेसलर हैं, बच्चों से लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन ग्वालवाल कहते नहीं नहीं नहीं, ये कन्हैया और ये हमारा बलदाऊ, ये ऐसे इनको अभी पकड़ के मार देंगे, हमने देखा है ये कैसे पहचान। और जैसे युद्ध शुरू हुआ, थोड़ी देर के बाद चाणूर को घुमा के कृष्ण ने पटका और प्राण निकल गए, मुष्टिक को बलराम ने मारा। और फिर कृष्ण ने कहा दाऊ जी अब इसके भाई खल तोसल आ रहे हैं, इनको आप देखो, मैं मामा इंतजार कर रहा है। कृष्ण एकदम जंप मार के स्टेज पे ऊपर पहुंचे और कंस उठ के खड़ा हो गया। यही बात हमने कह रहे थे कि भगवान के भक्त के हृदय में भगवान आता है तो लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, यहां तो साक्षात भगवान आए तो कंस उठ के खड़ा हो गया। बोलो ठीक है, भगवान का आज्ञा का पालन किया, उठ के खड़ा हुआ और तलवार निकाली। तलवार निकाली तो कृष्ण ने मामा के बालों को पकड़ा ऐसे और झटका दिया ऊपर से, मामा नीचे जाके नीचे गिरा, सीधा कहां गिरा, मंच से नीचे गिरा, प्लेटफॉर्म से, और गिरा, और जैसे गिरा कृष्ण की छाती के बैठा ऐसे मुक्का मारने के लिए हाथ ऊपर किया, देखा मामा का तो हार्ट फेल हो गया। बोला मरा नहीं, मैंने मारा नहीं कुछ भी, मुझे मामा का नबस देखो कुछ नहीं, अरे मामा तो ठीक नहीं, मामा गया, मामा को मैंने मारा, मुक्का भी नहीं मारा, ऊपर से नीचे गिराया और बेचारे का प्राण चला गया। अब तो ये भगवान श्री कृष्ण जिसके हृदय में आ जाए, वसुदेव के मन में आ गए। फिर वसुदेव ने अपने मन से भगवान को देवकी की दिल में पहुंचा दिया। इसको
प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसको कहते हैं गुरु जब शिष्य को दीक्षा देता है उस वक्त अपने हृदय से भगवान को जो उसने प्रकट किया है अपने शिष्य के हृदय में स्थापित करता है। मानो वसुदेव ने देवकी को दीक्षा दे दी और देवकी के हृदय में जैसे भगवान आया, देवकी चमकने लगी, लेकिन देवकी को डर था, इसलिए उसका प्रकाश ऐसे दिख रहा था जैसे आग के ऊपर कोई कवरिंग आ गई हो, कुछ ढक के रखा हो आग को। कंस आया, कंस ने देखा ये देवकी चमक रही है, गर्भवती भी है, लगता है मेरे मारने वाला इसके पेट में आ गया है। अब कंस समझ गया, लेकिन कंस का बुद्धि बदल गया। कंस बोलता है स्त्री है, गर्भवती है, मेरे आश्रित है, इसको अगर मैं अभी मारूंगा तो ये ठीक नहीं है, बच्चे को जन्म देने दो फिर देखेंगे। तो ये दूसरी बात है, जिसके हृदय में भगवान आते हैं ना, तो कंस से भी ज्यादा कोई जालिम क्यों ना हो, क्रूर कोई कितना भी हो, उसके सामने उसका मन बदल जाएगा, बोलेगा नहीं इसका नाम नहीं, इसको कुछ नहीं करना। अफ्रीका के किसी मंदिर में राधा कृष्ण विराजमान थे और काले तो चोरी करना ये तो कालों का काम है, तो लूटना कालों का काम है, धंधा ही, ये कालों का निषाद है, ये निषाद है, कहां से जन्म हुआ, भागवत में लिखा है। वेण महाराज के अधो भाग का जब मंथन किया ऋषियों ने, तो काला कलूटा पुरुष निकला, वो रोने बोला कहां जाऊं, बोला निषाद बैठ जाओ, वो निषाद जाति हुई उसको बोला वन में रहो, फॉरेस्ट में रहो, शहर में नहीं रहो, उनका काम है डाका डालना। तो हमारे एक मंदिर में आ गए काले लोग, उठा के पिस्तौल और ये सब भक्तों को कहा हाथ ऊपर कर लो, पर्दा भगवान का बंद था, बोला अंदर कौन है, बोला अंदर हमारा स्वामी है, अवर लॉर्ड, हम वी आर वर्शिपिंग इन लॉर्ड, बोला ओपन करो। अब अंदर को पता नहीं था, पुजारी अंदर से बाहर आके शंख बजाया, बोला नो 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 साउंड। तो उसने पर्दा जो खोला तो सांवला सा कृष्ण काला और राधा गोरी, इनका मन ऐसा बदला, काले नाचने लगे, हाय हाय हाय, काले के साथ गोरी की शादी हो गई, अरे ये काले की पूजा करते हैं, ये हमारा काला, ये इज योर मास्टर, ये काला आप इसका पूजा करते हो, बोला इसको बोल आरती करते हैं, रसगुल्ला इसको खिला, अरे काले का इतना वैल्यू है इधर, गोरी के साथ शादी हो गई, बोला नहीं तुम हमारे फ्रेंड हो, हम तुम्हें लूटेंगे नहीं, वो लूटने आए थे, लूटना भूल गए, वो भगवान को जो देखा तो उनके मन में लूटने वाला मन के भाव चला गया, बोला ये तो काली की पूजा कर रहे हैं, लोग तो हमसे नफरत करते हैं, ये देखो और कितनी सुंदरी गोरी, सुंदर गोरी राधा साथ खड़ी है, अरे बोला ये तो बड़े हमारे मित्र हैं, तो भक्त बन के, बोला हम तो इधर ही रहते हैं, ये रसगुल्ला खाओ और सुखी रहो, अब कहीं और जाके डाका डाल के क्या करेंगे, यहां बहुत सुखी रहने के लिए। तो ये जो भगवान किसी के हृदय में आए, कोई भगवान का दर्शन करे, तो फिर उसके हृदय में क्रूरता नहीं रह सकती। आगे लिखा है कि भगवान जब, भगवान अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं, भगवान का जन्म कैसे दिव्य होता है, दिव्य का मतलब ट्रांसेंडेंटल, अलौकिक होता है, तो भगवान के प्रकट होने से पहले शंकर, ब्रह्मा, इंद्र, नारद, वरुण, ये सारे देवता प्रार्थना करने आए भगवान को, इसका नाम है गर्भ स्तुति। तो भगवान की प्रार्थना करने सब आए और उनके जाते ही वसुदेव और देवकी के सामने चार हाथों से श्री कृष्ण प्रकट हुआ, सर के ऊपर सुंदर मुकुट लगा हुआ था, गले में वैजंती माला थी, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म था। वसुदेव बोलता है ये कौन है, अरे भगवान आप प्रकट हो गए, हम आपको प्रणाम करते हैं। देवकी ने प्रणाम किया, तब भगवान बोलने लगे। अब भगवान का जन्म कैसा है, प्रकट होते ही बोलने लगे और बोल के कहते हैं वसुदेव और देवकी, तुमने तपस्या की थी तीन जन्म पहले, तुम्हारा नाम पुरुषनी था और वसुदेव तुम्हारा नाम सत्तुपा सपुत्ता था, पुरुषनी और सत्तुपा, क्या पुरुषनी और सत्तुपा सुप्ता ऐसे, और तुमने तपस्या की और मेरे जैसा पुत्र मांगा,
मेरे जैसा और कोई नहीं होता है। मैंने कहा अपने वचन को सत्य करने के लिए, तुम्हारे घर में प्रश्नी और सतुपा, तुम्हारे घर में मैं प्रश्नी गर्भा बना, फिर दोबारा तुम आदित्य और कश्यप हुए, मैं तुम्हारे घर में वामन देव होकर आया, अब वसुदेव और देवकी तुम्हारे घर में मैं कृष्ण होकर प्रकट हो रहा हूं। अब तुमको अगर डर लगता है कंस से, तो मेरे को यहां से लेके नंद गोकुल में यशोदा के पास छोड़ के आओ, और वहां एक छोटी बालिका है उसको यहां ले आना, ये भगवान ने सब कुछ कहा है। तो क्या भगवान का जन्म ऐसा कोई मॉरिशस में पैदा होता है, बच्चा नर्सिंग होम में कहे मां बाप को मुझे घर ले चलो, ऐसा हुआ क्या कभी? तो भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान का प्रकट्य होता है। फिर भगवान जो चतुर्भुज थे एकदम छोटा बच्चा हो गए, जैसे ड्रामे में ड्रामा हो, एकदम बच्चा बन गए, और वसुदेव ने उसको उठाया, और वसुदेव के उठाते ही उनकी हाथ की हथकड़ी खुल गई, पांव की बेड़ी खुल गई, और जेल के दरवाजे खुल गए, और पहरेदार। ये इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जिसके हृदय में भगवान आ जाए, अथवा जो भगवान की भक्ति करके भगवान को गोद में ले ले, तो उसके बंधन सब खत्म, उसके सब बंधन खत्म हो जाते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता है, वो कहीं भी जा सकता है। बताइए 70 साल के प्रभुपाद जी कहां वृंदावन छोड़ के पानी के एक कार्गो शिप में एक महीना तक समुद्र के अंदर ऐसे तकलीफ से जा सकते थे? कैसे जा सकते थे? बहुत मुश्किल है, कोई ऐसे ट्रेवल नहीं करता है। लेकिन कृष्ण भगवान हृदय में प्रकट हो गए, कृष्ण के भागवत रूप, कृष्ण के स्वरूप को, प्रभुपाद के साथ भागवत थी, भागवत को साथ में ले लिया, तो समुन्द्र के रास्ता भी उनके लिए भयानक नहीं बन गया। एक जगह थे तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रभुपाद को ड्रीम में बताया कि डोंट वरी, नाउ आई विल नेविगेट दिस शिप, अभी मैं इस शिप को चलाऊंगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो भगवान उनके साथ हो गया, तो सात समुद्र पार पहुंच गए, और फिर तो साक्षात भगवान जगन्नाथ कृष्ण यहां से भागते हुए सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए। एक कहावत है, आपको तो इतना अनुभव अभी नहीं होगा, वो हमारे गुरु शक्ति को मालूम है, गाय जब बच्चे को जन्म देती है ना, तो बच्चे को आप लेके जाओ, गाय पीछे पीछे अपने आप आएगी, आपको जहां बच्चा गाय का जाएगा, गाय उधर उसके पीछे जाएगी, ये गाय का नेम है। ऐसे जहां भक्त जाएगा वहां भगवान पीछे पीछे भागता हुआ जाएगा, इसलिए गाय को बोलते हैं वत्सला, गाय के बछड़े को बोलते हैं वत्स, और गाय है वत्सला, और भगवान को कहते हैं भक्त वत्सल। तो भक्त हो गया जैसे बछड़ा, और भगवान हो गई गाय, जहां जाएगा बछड़ा वहां जाएगी गाय, जहां जाएगा भक्त वहां जाएगा भगवान, जहां भक्त जाएगा वहां भगवान जाएगा। और प्रभुपाद जी कृष्ण भावना के प्रचार के लिए अमेरिका चले गए, और भारत से एक करने के लिए जगन्नाथ अमेरिका पहुंच गए। एक नहीं, बहुत से ठाकुर जी भागते हुए प्रभुपाद की सहायता के लिए अमेरिका चले गए। कितने ठाकुर जी की स्थापना की। इंद्रदेव महाराज एक दिन कह रहे थे कि एक साक्षी गोपाल वृंदावन से चल के गया था विटनेस बनने के लिए, लेकिन प्रभुपाद के पीछे सैकड़ों राधा कृष्ण गौर नेता दुनिया के अंदर प्रभुपाद के प्रचार की साक्षी देने के लिए चले गए कि प्रभुपाद ने लोगों को कितना कृष्ण भक्ति और साइंस का, कृष्ण लव ऑफ गॉड, कृष्ण प्रेम का संदेश दिया है। तो भगवान का जन्म ऐसे कैसा होता है? दिव्य होता है। अपीयरेंस ऑफ कृष्ण इज ट्रांसेंडेंटल। और दूसरा है कर्मच दिव्यम, और भगवान की लीलाएं हमारे जैसी नहीं होती है। भगवान को हमारी तरह भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, उनका चमड़ी नहीं है, उनका खून नहीं है, उनके अंदर हड्डी नहीं है, वो सारे का सारा सच्चित आनंद है। इसलिए वो चाहे तो एक उंगली से पूरे ब्रह्मांड को उठा सकते हैं। तो गोवर्धन तो सात साल के धारण कर लिया, ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता। वो तो गोवर्धन को छोड़ो, आप ये गिलास उठा के 7 घंटे ऐसे हाथ रख के दिखाओ, 7 घंटे गिलास ऐसे नहीं पकड़ सकते, वो 7 दिन पहाड़ को उठे। इसको कहते हैं भगवान की लीला दिव्य है, ऐसे कोई कर नहीं सकता है। तो भगवान ने जो कुछ किया वो मानव नहीं कर सकता है। और कृष्ण ने जो कुछ किया वो तो समझने में इतना मुश्किल है कि जिसके ऊपर भगवान कृपा करे वही उसको समझ सकता है, दूसरे किसी को समझ में नहीं आ सकता। इसलिए भगवान की जो लीलाएं हैं उनका पढ़ना चाहिए रोज। प्रभुपाद जी ने तो ये नियम बनाया कि रात को सोने से पहले परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण जो दसम स्कंद भागवत के 90 अध्याय है वो अगर एक रोज का अध्याय पढ़ोगे तो तीन महीने में पाठ हो जाएगा, एक पेज पढ़ोगे तो भी साल में पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाए दोबारा पढ़ो तो रात को सोगे तो भगवान के स्वप्न आएंगे और पढ़ोगे तो हृदय में बड़ी शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। तो असल में हमारी कथा का मुख्य उद्देश्य है कि आपके हृदय में भागवत को पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हो। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं पढ़ने का पुस्तक रोज देखने की आदत पड़े, उसको पढ़ के देखो तो भगवान कृपा करके अपने आप प्रकट होके आपको उस पुस्तक में दिखाई देंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भागवत के हर एक पेज पे कृष्ण और राधा का दर्शन हो सकता है अगर आपके मन शुद्ध है, और मन तब शुद्ध होगा जब खान पान शुद्ध करेंगे, भगवान का प्रसाद खाएंगे, अच्छे भक्तों का संग करेंगे तो मन शुद्ध हो गया और भगवान का नाम लेंगे तो फिर हृदय में नहीं भागवत में भगवान का दर्शन हो जाएगा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है, किसी एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन और कमेंट?